है जिसमें आत्मा का अनुभव कैसे होता है, सम्यक दर्शन क्या है। जब आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा होता है तब सम्यक दर्शन कैसे कायम रहता है, इस सब की चर्चा चल रही है। आत्मा के अनुभव को सम्यक दर्शन समझ लिया गया है, जबकि सम्यक दर्शन अकेले श्रद्धा गुण की पर्याय का नाम है और अनुभव अंत गुणों की पर्याय का नाम है। उसमें ज्ञान गुण, आनंद गुण, वीर गुण सभी समाहित हैं। स्थिति यह है कि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति अनुभव के काल में होती है, उत्पत्ति अनुभव के काल में होती है, लेकिन उसकी सत्ता को रहने के लिए अनुभव की जरूरत नहीं है। वो अनुभव जो जिसे हम शुद्ध उपयोग कहते हैं, अंतर्मुख उपयोग है, तो दूसरे प्रकार का अनुभव मैंने बताया था ना, कि इन्हें 20 साल का अनुभव है, 25 साल का, वो तो रहता है, लेकिन वो पहले नंबर का अनुभव नहीं रहता है। वो बहुत क्षणिक होता है और फिर उपयोग बाहर आ जाता है। तो इसमें ये शंका होती है हमें कि वो नहीं रहा तो इसे हमारा सम्यक दर्शन छूट गया, और हमको अनुभव की इतनी अधिक महिमा आ गई है कि सम्यक दर्शन की महिमा भी उसके सामने हमारे लिए जरा फीकी सी हो गई, और सम्यक दर्शन की इतनी आ गई है कि जिसके आश्रय सम्यक दर्शन होता है वो आत्मा हमारी दृष्टि से ओझल हो गया। ये कह रहे हैं कि हमारे जीवन में एक दफे निर्णय हो गया कि ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माँ हैं, ये मेरे भाई हैं, तो इसके बाद आपको ये रोजाना रटना पड़ता है, आंखें बंद करके सोचना पड़ता है कि कभी भूल जाते हैं। 24 घंटा विकल्प तो नहीं रहता है ऐसा कि ये मेरा भाई है, ये मेरे माँ है, ये मेरे पिता हैं। लेकिन एक दफे निर्णय हो जाने के बाद वो बात ज्ञान में भी 24 घंटा विद्यमान रहती है, यानी श्रद्धा में तो रहती है तो अलग बात है। हम समझते हैं कि जो इसमें ही लिखा है, स्थूल कथन है कि क्षयोपशम ज्ञान वालों का ज्ञान एक समय में एक ही वस्तु को जानता है। ये सिर्फ प्रेरणा के लिए है कि तुम यदि दुनियादारी में अपने उपयोग को लगाओगे तो आत्मा में कैसे लगेगा, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। हम अनेक को जानता है और स्व और पर दोनों को एक साथ जानता है, क्षयोपशम ज्ञान में भी, अनुभव के ज्ञान में भी, और अभी भी जब अनुभव नहीं कर रहे तब। स्वपर प्रकाशक आत्मा का स्वभाव है, और स्वभाव उसे कहते हैं जो 24 घंटा जागृत रहे। सोते हुए का नाम स्वभाव नहीं है, समझे ना। जागृत, जागृत माने पर्याय में प्रकट रहे, उसका नाम है जागृत रहना। तो नवोदिया जीव है ना, जिसके पर्याय नाम का सबसे छोटा ज्ञान होता है, अक्षर के अनंत में भाग, उसमें भी स्व और पर दोनों जानने में आते रहते हैं 24 घंटा। तो इन दोनों में मतभेद नहीं समझना। जहां ये लिखा हो कि हमारा स्थूल ज्ञान है, एक समय में एक ही बात को जानता है, तो वो इस अपेक्षा से है कि तुम यदि विषय कषाय में उपयोग को लगाए रखोगे तो आत्मा में फिर तुम्हारा उपयोग कैसे लगेगा। इसके लिए वो आता ना, दो मुख सुई सिए न कंथा, दो मग पक्षी चले न पंथा, दो ये काम नहीं होए सयाने, विषय भोग अर मोक्ष भी ज्ञान। दो काम एक साथ नहीं होंगे, तुम भोगों में भी मस्त रहो और मोक्ष की जगह पुरुषार्थ भी तुम्हारे चालू रहे, है ना। अभी बहुत स्थूल कथन है, असली बात तो ये है कि चौथे में, पांचवें में दोनों ही चीजें चलती हैं, एक साथ चलती हैं। मोक्ष मार्ग शुरू हो गया चौथे गुणस्थान में, छायक सम्मा दर्शन हो गया, उसमें कोई शंका की बात नहीं है नवीन जी। और उसी काल में 96,000 शादियां कर रहे, 6 खंड की विभूति को जीत रहे, और ये खा रहे, पी रहे, उठ रहे, बैठ रहे, ये सब भी चल रहा है, मोक्ष मार्ग भी चल रहा है। पर गजब की बात तो ये है कि उसी समय असंख्यात गुणी निद्रा हो रही है। वो आप बोलते नहीं गुण श्रेणी निद्रा, वो तत्वा सूत्र में एक सूत्र आता है ना, गोमर सार में भी एक गाथा आती है, सम्यक दृष्टि श्रावक वृता अनंत वियोजक, क्या था ना, सम्यक दृष्टि के अनंत असंख्य गुणी निद्रा प्रति समय होती है। टोटमल जी साहब ने गोमर सार में ऐसा प्रश्न किया कि असंख्य गुणी तुम कह रहे तो गुणनफल किससे लगाना, किससे असंख्य गुणी, समझे ना, उसके पहले तो निद्रा होती ही नहीं है, तो असंख्य गुणी तुमने किससे लगाई है, उसका क्या मतलब है। जैसे कि जीरो में चाहे एक का गुणा करो, चाहे दस का करो, चाहे सौ का करो, आखिर तो अंक में अंत में जीरो ही आना है ना। तो उन्होंने लिखा उसके उत्तर में, सम्यक्त के सन्मुख भद्र मिथ्या दृष्टि से, उन्होंने कहा अच्छा उससे, तो उसके निद्रा होती है कि हाँ होती है, और वो कैसे है, तो सम्यक् प्रकाश जी आपको समझा रहे हैं कि विशुद्धि में शुद्धि का अंश भी होता है ना। गुरुदेव ने बहुत अच्छा समझाया उसे, जो आत्मा के प्रति अंदर में जो रुचि हुई शास्त्र और गुरु के मुख से सुनकर, अभी अनुभव नहीं हुआ, उसमें इतनी ताकत है कि उससे निद्रा शुरू हो जाती है। हाँ, अब करण मरण अपन बाद में निपट लेंगे, नहीं तो सब लोग बेचारे आए हैं सुनने के लिए, क्या समझ में आएगा ये, लेकिन उनके शास्त्र में लिखी उनके निद्रा होती है, और उससे असंख्यात गुणी सम्मा दृष्टि के, उससे असंख्यात गुणी वृत्ति के, उससे असंख्यात गुणी अनंतानबंदी का विसर्जन करने वाले के, ऐसे वो जो कितने हैं, ग्यारह स्थान हैं, ग्यारह ग्यारह जगह अनंत गुणी असंख्य गुणी असंख्य गुणी होती है। तो अभी अपनी बात के तरीके से अभी कैसे ऐसे कैसे हो सकता है। अब मैं आपसे बात पूछू कि शास्त्र के आधार पर और गुरु मुख से सुनने के आधार पर इतना मजबूत और पक्का सिद्धांत और सच्चा सिद्धांत कैसे हो जाता है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं सब, के मेरे माँ कौन है, मेरे पिता कौन है, और अपना कौन सा गोत्र है, ये हमारे बच्चों ने कैसे जाना, क्यों पिता जब पैदा हुए थे तो ना वे कुछ जानते नहीं थे, लेकिन ये हमारी माँ है, ये हमारे पिताजी हैं, और हम भारिल हैं, कासली वाले हैं, बाकली वाले हैं, और क्या क्या हैं आप समझ लेने, सब पाटनी हैं, पांड्या हैं, क्या क्या हैं, क्यों ये आपने कैसे जाना, है आपके पास कोई थर्मामीटर, ऐसे खून मून की जांच होती है जिसे पता चल जाए कि आप पांड्या हैं या पाटनी हैं, क्या बात करते हो, हमारे पिताजी ने बताया बस बात खत्म। तो पिताजी के बताने से ये बात हमारे को इतनी मजबूती से समझ में भी आ जाती है और जिंदगी भर में जमी भी रहती है, और सोते में भी हम पांड्या हैं, हम पाटनी हैं, हमारे ये पिताजी हैं, ये माताजी हैं, ये सब बराबर वो ज्ञान कायम रहता है कि नहीं रहता है। सो तो आगम और गुरु मुख से ज्ञान समझने की कितनी बड़ी कीमत है, ये मुझे इसलिए समझाना पड़ रहा है कि गुरुदेव के प्रताप से हमने इसकी इतनी धुनाई कर डाली है कि बस वो तो कुछ नहीं होता है, शब्द शास्त्रों के पढ़ने से कुछ नहीं हुआ, गुरु के मुख से कुछ नहीं होगा, और जब तक आत्मा का अनुभव नहीं हो तब तक जीरो है। बहुत बहुत सुनी कि नहीं सुनी, वो तो इसलिए था रमेश जी कि हम उसमें ही संतुष्ट हो गए थे, और उसके आगे बढ़ने का उपाय तो वो आत्मा का अनुभव है ना। जैसे कोई छठवीं सातवीं क्लास में विद्यार्थी पढ़ता है तो उसे गुरुजी बताते हैं कि क्या H2O ऐसा बोलते हैं ना, दो गैस जो भी हो आप H2O वे मिले तो ऑक्सीजन बन जाती, क्या बन जाती है, हैं जो भी तुम्हारा हो तुम समझ लेना। तो वो जब गुरुजी पहले दिन बताएं तो उसे चुपचाप गुरुजी के कहने से ही माननी पड़ती है, और किताब में लिखी है वो माननी पड़ती है, लेकिन जब आगे की क्लास में जाएगा तो उसे कहिए जब तक तुम प्रयोग करके नहीं देखो, दोनों गैसों को पानी को ऐसा रखो और उसमें से गैस तोड़ दो, क्यों और अलग अलग हो गई और दोनों को मिला दो फिर पानी बन जाए, तो उसमें जो श्रद्धा आती है वो पहली श्रद्धा वैसी टाइप की नहीं है, सिर्फ इतना बताना है। कल जो मैंने कहा था ना कि वो दवाई खाने का उदाहरण दे करके कि दवा खा के आराम हो गया उसके बाद जैसी प्रतीति आती है वैसी प्रतीति पहले किसी के कहने से नहीं आती है, लेकिन वो बिल्कुल जीरो हो ये बात नहीं है। क्या नहीं तो हमारा सारा व्यवहार खत्म हो जाएगा, फिर हम कहेंगे हर चीज को प्रयोग करके देखो, तो कैसे प्रयोग करके देखेंगे हम है? मैं एक जिनवाणी माता के बारे में एक बात कहता हूं, शायद पहले यहां कही कहने की बहुत मार्मिक बात है। वो प्रश्न मैंने अपने गुरु जी से किया था, नन्ने लाल जी सिद्धांताचार्य थे, वो यहां बहुत आते थे कलकत्ते में, अरे उसमें आते थे बेलगछिया में, तो करने उनसे हमने ये प्रश्न किया था, उन्होंने जो जवाब दिया था वो बात मैं आपसे कह रहा हूं, बहुत मार्मिक बात। हमने उनसे कहा गोमर साहब पढ़ते थे कि साहब इसमें ये सब बातें लिखी हैं सच्ची हैं? क्या लिखी है? इतनी गाय, इतनी भैंसें, इतनी चिकनी, इतनी बकरिया, इतना लड़ैया, इतने कुत्ते, इतनी बिल्ली, सबकी संख्या लिखी है, इतने त्रिंज, इतने मनुष्य, इतने देव, इतने नारकी, इतनी स्त्री, इतने पुरुष, इतने नपुंसक, क्यों? और कभी कभी ऐसा लगता है कि जचता नहीं है, क्योंकि जितने स्त्री उतने ही नपुंसक, और नपुंसक दिखते तो है नहीं है ना, तीन भव आठ भव मनुष्य पुरुष में के मिलते हैं, पुलुंग के स्त्री के और आठ नपुंसक के, तो इतने नपुंसक के जीव दिखाई देना चाहिए, दिखाई देता नहीं है। तो मैंने कहा ये सब बातें सच्ची हैं क्या? उस वक्त हमने पूछा उनसे, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो सुनना, मेरी हिम्मत नहीं है वो जवाब देने की, वो तो हमारे गुरुजी ने हमें दिया था, तुमसे मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि बेटा एक बात बताओ कि कोई विधवा का बेटा है और स्कूल में पढ़ता है तो सबके पापा उसे लेने आते हैं, लेकिन उसके पापा उसे कभी लेने नहीं आए, मां आती है। तो लड़के कहने लग गए इसका बाप है ही नहीं, ये बिना बाप का है, क्या चिढ़ाने लग गए, ये बिना बाप का लड़का है। तो लोग पूछे तो कहें तुम्हारा बताओ नाम, बताओ बाप का नाम बताओ। अब उसको तो घर में ऐसा बताया नहीं गया था, और जब वो इसलिए बेचारा रह जाए तो उसने आकर के अपनी मां से पूछा, समझ लो विधवा थी अथवा तलाक ले लिया था, इतना जोर का झगड़ा हो गया था कि वो उसका नाम भी नहीं लेना चाहती थी। तो उस लड़के ने अपनी मां से पूछा कि मां मेरे पापा कौन है, उनका क्या नाम है? कहे तेरे क्या कमी है, मैंने कोई कसर बाकी रखी है तेरे खाने पीने उठने बैठने में खर्चे में पानी में, कि जो पापा होते वो करते वो मैंने कुछ कमी रखी है, मैं ही तेरी मम्मी हूं और मैं ही तेरा पापा। क्या नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, बताना पड़ेगा, क्योंकि सारे मेरे सहपाठी मेरे से पूछते हैं, मेरा समझ ना। अब उस मांस ने बताया, कुछ भी नाम बताया, रमेश चंद, सुरेश चंद, जो भी नाम बताया कि ये तेरे पिताजी हैं। तो वो लड़का कहे मम्मी सचमुच वो ही है मेरे पिताजी, इसका क्या अर्थ है? उसके पिता कौन है इसको बताने के लिए सबसे ज्यादा प्रमाणिक पुरुष, जैसे आप तो पुरुष बोलते हैं, प्रमाणिक पुरुष को बोलते हैं आप तो पुरुष, कौन है, कौन व्यक्ति हो सकता है, उसकी मां से ज्यादा कौन व्यक्ति जान सकता है कि उसका पिता कौन है ना, कोई दूसरी जगह जाने नहीं जा सकता, और मां बता रही है और वो कहता है सचमुच वही है, क्या बात करता है बेटा, मैं कह रही हूं ना कि वो ही है, तो वो कहता है व्हाट इज द प्रूफ। अब क्या होगा बोला, तो इसका क्या प्रमाण है कि वो ही मेरे पापा है? तो मां क्या जवाब देगी मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मां ये कहेगी कि मैंने एक कल्पना नहीं की थी कि एक दिन मेरा बेटा मेरे से पूछेगा कि उसका बाप कौन है और मैं बताऊंगी, तो वो शंका करेगा कि सचमुच यही है, और मैं फिर कहूंगी कि नहीं वो ही है तो मुझसे प्रूफ मांगेगा बेटा, ये मैंने सोचा नहीं था, नहीं तो मैं कुछ प्रूफ रख दी। ये मेरा बेटा ही मेरे से ऐसा प्रश्न करेगा, दुनिया में कोई कर सकते हैं, नालायकों की कमी नहीं है। लेकिन जिस बेटे के लिए मैंने सर्वस्व समर्पण किया है, माँ और बाप दोनों की ड्यूटी निभाई है, क्यों दूसरी शादी इसलिए नहीं की कि इस बेटे के साथ अन्याय हो जाएगा, इसका लालन पासन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाएगा। और वो ही बेटा कहता है कि प्रूफ दे कि बेटा मैं तो ये सोच रही हूं कि पृथ्वी फट क्यों नहीं जाती है और मैं उसमें समा जाऊं, बस अभी मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं है। ऐसे ही अपनी जिनवाणी अपनी माता है ना, है ना, बोलते जिनवाणी माता। तो जिनवाणी माता में जो बातें लिखी हैं वही, कितनी छकरियां हैं, कितने लड़ैया हैं, तो वो बातें हम उनके बेटे हैं और वे उनसे पूछते हैं कि क्यों मम्मी ये बात क्या है, क्या है सच्ची है, बोलो क्या कहे जिनवाणी। और जब वो कहे हाँ बेटा बिल्कुल सच्ची है, तो कहेंगे व्हाट इज द प्रूफ, कि इसका प्रमाण लाओ, कहने सिद्ध करो। वही हो गई ना, मेरा बेटा बाप कहे मैं तेरा बाप हूं, कहे तुम प्रमाण लाओ, सर्टिफिकेट लाओ कि मैं तुम्हारा बाप हूं, बोलो क्या करोगे। तो बोले बेटा ये जिनवाणी माता के प्रति इतनी शंका करना, ये जिनवाणी माँ का कैसा अपमान है, ये हमारी जिनवाणी आज तक बर्बाद क्यों हो गई, अजैनियों ने इसको जला दी, इसलिए नहीं, हमारी इसके प्रति ऐसी उपेक्षा और ऐसी आशंका, ऐसा शक, इसने इस जिनवाणी माता को पृथ्वी माता में फट जा और उसमें समा जाने के लिए बाध्य कर दिया, इस उपेक्षा ने इसको बाध्य कर दिया। कोई कितने जलाएगा ये मूर्तियां, कोई कितने तोड़ेगा, वो एक तोड़ेगा हम चार बना लेंगे। बहुरूपिणी विद्या सिद्ध हो गई थी ना रावण को, एक सिर काटो दो हो जाते थे, शास्त्र विरोधी कितने जलाएंगे। अपन कहते हैं ना दक्षिण भारत में बहुत जलाए हैं, ऐसा किया ऐसा किया, लेकिन अपन बिना शास्त्र से रहित हो गए क्यों, और अपने शास्त्र भी कितने हटाए, कितने हटाए अपने साधर्मियों ने, अपने सगे भाइयों ने, क्यों एक भाई ने छपाए और दूसरे भाई ने हटाए, जलाए, पानी में फेंके, सब कुछ किया कि नहीं किया। तो अपन शास्त्रों से रहित हो गए होंगे कि जितने शास्त्र आज मुमुक्षुओं के घर में हैं और उनके मंदिरों में हैं और जितना स्वाध्याय वो करते हैं, मुझे बताओ कौन करता है, किसके पास है। आप अमेरिका चले जाइए यहां से और 10,000 घर वहां जैनियों के हैं जिनकी लिस्ट मेरे पास है विद एड्रेस, उनके घरों में जाकर तलाशी लीजिए तो किसी के घर में यदि 100 किताबें हैं धर्म की तो 51 अपने टोडो मल स्मारक ट्रस्ट की होंगी, अकेले की हो, बाकी सबकी मिला के 100। दिगंबर और श्वेतांबर दोनों की बात कर रहा हूं। ऐसे दूसरों के मानने से कोई मरते हैं, ये तो जिनवाणी माता है, ये गो माता है, देखो उसे कितने मार मार के काट काट के खा रहे हैं, लेकिन उसकी संख्या तिगुनी हो गई है, जितनी थी ना जब भारत आजाद हुआ था उससे आज गायों की संख्या हिंदुस्तान में तिगुनी है। और शेर जो सबको खाता है, जिसे कोई नहीं खाता है, क्या उनकी नस्ल खत्म होती जा रही है, क्या है तुम समझते क्या हो। ऐसे दूसरों के नष्ट करने से कोई नष्ट नहीं होते हैं, हमारी उपेक्षा जिस दिन होगी उस दिन हम नष्ट हो जाएंगे। इस तत्व ज्ञान के प्रति हमारी अंदर से उपेक्षा होगी तो हम नष्ट हो जाएंगे। तो देखो हमने कितनी बातें अपने माँ बाप के कहने से मान रखी है, और मैं माँ बापों की इज्जत खराब नहीं करना चाहता हूं, फिर भी इतना अंदाजा तो हम लगा ही सकते हैं कि ऐसे माँ बापों की भी इस दुनिया में कमी नहीं है जो सातों व्यसनों में पारंगत हैं। क्यों रोजाना तीन बोतल पीते हैं, ऐसे माँ बाप नहीं है जगत में, बोलो हमसे ज्यादा आप जानते हैं है कि नहीं है, बोलिए। तो भी दो तीन बोतल पीने वाले बाप ने अपने बेटे से कहा कि मैं तेरा बाप हूं, अपन फलाना है, ये कोई गोत्र का नाम लिया, समझिए ना। तो उसने उस पर आज तक शंका नहीं की। और जिन मुर्यादों ने, संतों ने सारे जीवन भर झूठ नहीं बोलने की प्रतिज्ञा ली है, सत्य महाव्रत लिया क्या नहीं, और उनने जो बात कही, जिनवाणी माता ने जो बात उन्होंने लिखी, उसमें हम शंका करते हैं। इस संदर्भ में एक बात और मार्मिक कहता हूं। आजकल हमारे बड़े बड़े विद्वान जो खासकर डॉक्टर नाम से जाने जाते हैं, दो तरह के विद्वान हैं, एक डॉक्टर और एक पंडित। अब दुर्भाग्य से मैं डॉक्टर भी हूं और पंडित भी हूं, इसलिए कोई डॉक्टर हो तो नाराज मत हो जाना, मैं भी हूं ना तुम्हारी जात में शामिल तो इस सचमुच गहरा अध्ययन तो उनको बिल्कुल है नहीं। और ऐसी बातें करते हैं, कोई महावीर जयंती पर व्याख्यान देने आएंगे कि हमारे तीन तीर्थंकर ऐतिहासिक सिद्ध हो गए हैं, इतिहास से सिद्ध हो गए हैं। इस गौरव के साथ में, अब महावीर ने जैन धर्म चलाया था ये बात सच्ची नहीं है, अब हम पारसनाथ तक पहुंच गए हैं, हम नेमिनाथ तक पहुंच गए हैं। क्या शिलालेख मिला है, ऐसा हुआ है, इतिहास में मिला है, ऐतिहासिक तीर्थंकर बोलते हैं उनको, और बाकी पौराणिक, आप समझते हो इसका मतलब, बाकी पौराणिक माने गप्पे लिखी हैं कि नहीं है हमें कोई पता नहीं है, कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है। आप देख लेना जाकर के, एक दो की सैकड़ों विद्वानों के लिखे हुए लेख मिल जाएंगे और भाषण। मैं उनसे एक बात कहता हूं वहीं जाकर के, आपको तो सिर्फ बता रहा हूं, क्यों भाई साहब, इतिहास ने कैसे सिद्ध किया ये तीन तीर्थंकरों को, अरे शिलालेख मिले हैं। सबसे प्राचीन मूर्ति 2200 वर्ष की हमारी है, मोहन जोदड़ो में। अच्छा, तो एक पत्थर का टुकड़ा जो जमीन में गड़ा था वो तो खोदने पर मिल गया, और उसमें जो लिखा था वो तो प्रमाण हो गया, उसके बारे में कोई शंका नहीं कर सकता। अरे जमीन में पुरातत्व में मिला, शिलालेख मिला है, शिलालेख मैंने भगवान से भी बड़ा, क्यों। तो मैंने पूछता हूं कि वो शिलालेख लिखाए किसने, उन राजाओं ने जो सातों विष्णों में पारंगत थे अपनी प्रशिष्टियां लिखाई 90% शिलालेखों में, और कहीं कहीं का वो भी बात आ गई। अभी जो चीज उस वक्त थी तो कभी फलाने आदमी भी इस वक्त से, तो सात विष्णों में पारंगत अपनी प्रशंसा के चाहे करने वाले उन राजाओं के द्वारा लिखा हुआ वो शिलालेख तो हो गया प्रमाण, पर हमारे जीवन में झूठ नहीं बोलने वाले नैन दिगम्बर वीतरागी संतों ने जो लिखा है समय सार में, प्रवचन सार में, पंचायती काय में, वो प्रमाण हो गया, वो पुराण हो गया, वो पौराणिक बातें हो गई। आदिनाथ थे, महावीर थे, फलाने थे, हमारी ये मूर्तियां हैं आदिनाथ की, फलाने की, इसकी, ये प्रमाणिक नहीं, नहीं शिव मंदिर है कि नहीं है भगवान जाने, फलाने जाने हैं कि नहीं है भगवान जाने है? क्यों। तो ये जो हमारे अंदर अश्रद्धा पैदा हो गई है, ये हमारे धर्म को लिए खतरनाक है। अरे भले आदमी तुम तो कहो कि हमारे 24 तीर्थंकर हैं, सबसे पहले आदिनाथ थे इस जमाने में, और उसके पहले भी अनादिनाथ थे, क्यों अनादिकाल से तीर्थंकर होते आए हैं, क्यों और भगत होते आए, कई चौबीसियां थी। अपने शास्त्र में ये बात लिखी है वो तुम्हारे मुंह में, विद्वानों के मुंह में नहीं आती है, इसे तुम गौरव की बात नहीं समझते हो। तुम ये नहीं कह सकते हो कि अरे जिन सेनाचार्य ने लिखी क्या बात करते हो, इसमें तुम्हें गौरव नहीं आता, पत्थर पे निकल आई उसमें तुम्हें खराब गौरव आता है, क्या फर्क है पत्थर और कागज में, जो कागज में लिखी है वो पत्थर पे लिखी है, क्यों। इसलिए हम इस बात को मानने के लिए तैयार। मेरे कहने का मतलब ये है कि जनवाणी माता पर, उसके विशेषज्ञों पर ऐसी श्रद्धा के साथ इसका स्वाध्याय करेंगे तो वो वस्तु हमें प्राप्त होगी, और उस पर अविश्वास से कोई चीज शुरू करेंगे तो समझ लेना वहां कुछ भी होने वाला नहीं। लोग का व्यवहार भी विश्वास के कारण चल रहा है। अब वही रही बातें, अब क्या कि सम्यक दर्शन की बात है कि सम्यक दर्शन में अपना आत्मा मैं कौन हूं और उससे भिन्न पदार्थ क्या है। कौन से भिन्न पदार्थ? कि जिन्हें धोखे से आत्मा समझ लिया गया है। आत्मा माने जीव और अजीव माने क्या है? सारी दुनिया के नहीं, सारी दुनिया नहीं, तत्व में नहीं है। अजीव द्रव्यों में सारी दुनिया है। अजीव तत्व क्या है? साधना। जिन्हें धोखे से जीव समझ लिया गया है उन चीजों का नाम है अजीव। जीव है नहीं तो वो हमारे पुण्य पाप के उदय से शरीर हमारे संयोग में आया, स्त्री पुत्र आदि आए ख्याल में है ना, और इनको हमने समझ लिया कि ये जीव है, वो अजीव है। इसलिए कहते हैं कि जीव को जानने के लिए ये जीव है और ये अजीव है इतना तो जानना ही पड़ेगा ना। अब आत्मा में उन अजीवों के स्त्री पुत्र आदि के लक्ष्य से जो राग द्वेष के भाव होते हैं, अब उन्हें अपने में शामिल करना के नहीं, पैदा तो अपने में ही हुए, बोलो, पैदा तो अपने में ही हुए ना। दो उदाहरण दिए हैं आचार्य ने, दो उदाहरण दिए हैं कि काई जल में पैदा होती है लेकिन जल का मैल है इसलिए जल नहीं मानी जाती है। लाख पीपल में पैदा होती है लेकिन पीपल की घातक है इसलिए उसे वो पीपल नहीं मानी जाती है। ऐसे आत्मा के लिए राग द्वेष घातक हैं, आत्मा के मैल हैं, इसलिए उन्हें आत्मा नहीं माना जा सकता। अपने आत्मा में हम उन्हें शामिल नहीं कर सकते कि भले ही हमारे यहां पैदा हो गए होंगे, हो गए होंगे क्या? नालायक है ना, तो नालायक बेटे को बाप अपना बेटा कम मानता है, अखबार में निकाल देता है, इस नालायक से मेरा कोई संबंध नहीं, इससे कोई लेन देन करेगा तो मैं उसका जिम्मेवार नहीं हूं। तेरा बेटा है कैसे नहीं है तू? क्यों? कि नहीं ये नालायक है तो मैं घोषणा कर देता हूं। कि तेरे घोषणा करने से क्या होता है? वो तो बेटा जैसे बेटा कहलाता है वैसे वो है। कि नहीं नहीं फिर भी मैं घोषणा कर सकता हूं। पैदा तो तेरे पत्नी के घर में, तेरे घर में वही हुआ है ना, हुआ होगा लेकिन मैं अपना नहीं मानता। ऐसे कहते राग देश तुम्हारे ही में ही पैदा भय है ना, कहते हुए होंगे, मैं उन्हें अपना नहीं मानता, मैं आत्मा नहीं मानता, इसका नाम है। अब ऐसा हमने जो वो आत्मा खोज निकाला शास्त्र के और गुरु मुख से, बहुत कठिन काम नहीं है। अब जब वो आत्मा उस पर हमें इतनी अगाध श्रद्धा है, अब कितनी उस श्रद्धा का स्वरूप बताऊं थोड़ा, कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो कहता है कहीं आपके तो बाल्ब खराब हो गए हैं, चेंज करना पड़ेंगे, बेहोश कर देंगे, ये सब बात है कि लिख के दो। क्या लिख के दो? कि तुम मर भी सकते हो, तो हमारी जिम्मेवारी नहीं। लिखाता है कि नहीं लिखाता? नहीं नहीं, अपने साइन करवाता कि नहीं? अपने घर वालों से कराता है, पत्नी से कराता है, माँ बाप से कराता है, और हम लिख के देते हैं कि हाँ भाई जो भी होगा हमारी जिम्मेवारी तेरी नहीं है तू तो, और वो हमारे सामने छाती चीर देता है, फाड़ देता है, तो ये सब हम किस भरोसे पे करते हैं? बोलिए, उस डॉक्टर पे हमारा कितना विश्वास है उसे आप कल्पना करो। लाखों रुपया देते हैं, हैं? और सारा शरीर सौंप देते हैं, और लोग कहते हैं कि वो डॉक्टर तो दिन में 3 बोतल पी करके फिर ऑपरेशन करता है, तो कहता है कि हमने सुना है कि वो बिना पिए करे तो ऑपरेशन फेल हो जाता है। अच्छा तो तभी होता है जब वो पी के करता है, हमें कोई अपराध नहीं है, बोलते कि नहीं बोलते। ये हम जगत में लोगों पर, किन किन लोगों पर कैसा कैसा विश्वास करते हैं, है? अरे आचार्यों पर, शास्त्रों पर विश्वास करने के लिए हमें मीन मेघ निकालते हैं, क्या करें ऐसे लोगों से बात? यानी बात विश्वास से शुरू होती है, हमें समझाओ और हमारा गला पकड़ने को फिरते हैं, ऐसा नहीं चलता। मैं सच्ची घटना बताता हूं, ये मेरे साले हैं, वो भी डॉक्टर हैं, यहां भी आए हुए हैं, उनका नाम है राजेंद्र बंसल, बहुत पुरानी बात, 30-40 साल पहले उनको थोड़ी आत्मात्मा की रुचि जगी तो मेरे पास आए घर 15 दिन की छुट्टी लेकर कि जरा समझूंगा मैं। तो रोज ना 1-2 घंटे माथा खराब करते। तो एक दिन मैंने समझाया, बोले आत्मा है इसका क्या प्रूफ है? मुझे जनमानी में लिखा है, ये लिखा है, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, आप तो ऐसे सिद्ध कर दिया। इनका ऐसा है कि हमको उन लोगों को ही समझाने का भाव आता है जिन्हें जनमानी पर भरोसा है, जिन्हें भगवान पर भरोसा है और हम पे भरोसा है। बाकी जिन लोगों को किसी पे भरोसा नहीं है उन्हें हमें समझाने का भाव नहीं आता। अब हमारे आप साले साहब हो तो आप बहन की बढ़िया मोना मोलान रोटी बनाई बनी खाइए और जयपुर घूमिए, हम तो आपको ले चलते हैं जयपुर घुमाने के लिए, हैं, और आराम से रहिए। ये चर्चा तो तब होगी जब तुम कसम खा के ये कहोगे कि हमें सच्चे देव पर भरोसा है, शास्त्र पर भरोसा है, गुरु पर भरोसा है, ज्ञानियों पर भरोसा है। बोले क्या बात करते हो, हम इतनी दूर से आए 15 दिन की छुट्टी लेकर आपसे समझने, तो आप पे भरोसा नहीं होता तो हम क्यों आते? मैंने कहा आए होगे लेकिन कह तो ये रहे हो कि हम किसी को नहीं मानते, मैं दिनवानी कहता इसको और आत्मा मान लो है ही नहीं, तुम तो सिद्ध करो। मुंह से तो ये बोल रहे हो कि भरोसा नहीं है, हम कह रहे भरोसा है ना, तो हम कह रहे मान लो ना क्यों शास्त्र का लिखा हुआ बताते हैं, मान लो ना। यहां से बात शुरू करोगे तो हम ना समझा सकते हैं ना तुम समझ सकते। श्रद्धा से बात शुरू होगी तो हम समझा भी सकते हैं और तुम समझ भी सकते। इसलिए यहां कहते हैं कि वो सम्मा दर्शन के समय में जो कौन शास्त्र से और गुरु मुख से पहले आत्मा का निर्णय होता है उसको शास्त्रीय भाषा में क्या बोलते हैं, देशना लब्धि। देशना तो वो है जो गुरुजी ने दी गुरुजी की तरफ से, और लब्धि उसका नाम है कि वो हमें मिली और हमारी समझ में आए, हमारे चित्त में बैठे, हमें स्वीकृत हो व्यवहार सही सही, उसका नाम है देशना लब्धि। मालूम स्टोडम जी इसी चिट्ठी में क्या लिखा है? ऐसा लिखा है कि वो समय सार में लिखा आंखें फाड़ फाड़ के देखता है, यहां लिखा रोमांच हो आता है। मतलब ये बात सुनकर अरे गजब की है। टोटम जी ने मोक्षमा प्रकाशक में तुम्हें देशना लब्धि प्राप्त हुई कि नहीं इसके 5-6 लक्षण लिखे पहचान लेना। तो क्या है मैं बता दूं आपको अभी, पेज नंबर निकाल घर पे पढ़ लेना मैं बता देता हूं। सबसे पहले लिखा है कि ये बात सुनकर सबसे पहला विकल्प ये आए कि अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। ये लक्षण है पहला, मैं तो सब जानता हूं, मैं तो सब जानता हूं, मैंने बहुत पढ़ा है, गया तू काम से बस, तुझे अपूर्व लगना चाहिए, अद्भुत लगना चाहिए, क्योंकि सचमुच ऐसी बात है जे जो अनादि से हमने नहीं समझी, नहीं तो आत्म कल्याण हो जाता, सब जानता था और सर्वज्ञ हो जाता ना, तो यहां काहे को बैठा है। सबसे पहला वाक्य क्या है पात्रता का, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। दूसरा वाक्य क्या है, मैं तो प्राप्त पर्याय में ही तन्मय था। क्या मतलब, मनुष्य पर्याय है ना ये पंडित हुकुमचंद, देह और आत्मा का मिक्सचर, पर ए मैं हूं, ए प्राप्त पर्याय में तन्मय हूं। दूसरा वाक्य, तीसरा वाक्य, इसकी स्थिति तो बहुत थोड़े काल की है, ये तो 70 वर्ष पहले पैदा हुआ था और 1-2 साल में जाने वाला है। क्या मैं इतना हूं, मैं तो अनादि अनंत तत्व हूं ना। तीसरा बात, ये लिखा है, ये मन में आया तो समझ लेना अब तुम्हारा ने बीज पड़ गया है। स्टार्टिंग का बात है क्या, हो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो प्राप्त हो, निकालो इसमें से, कहा निकालोगे? सम्मा दर्शन के सम्मुख 5 लब्धियों का वह प्रकरण है ना, उसमें निकालो, समझे ना। मुझे तो 52 होगा, 252 करीब हो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हुआ था, वो बस यही मानता था यही मैं हूं, है ना। इसकी स्थिति तो बहुत थोड़े काल की है, इसलिए मुझे निर्णय करना चाहिए कि मैं कितने मतलब कि मैं कौन हूं वास्तविक में। ये नहीं भैया, तुमने नहीं निकाला सही जगह, देखा तुमने निकाल के बताओ कहा। हाँ देखो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, मैं भ्रम से भूल कर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हुआ, परंतु इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े काल की ही है, यहां मुझे सर्व निमित्त आन मिले हैं। वो कहते अभी मेरे को ये बता रहे हैं ना, सब निमित्त मिल गए, निमित्तों पर हमें क्या कर रहे हैं, कोई समझाने वाला नहीं है, कलकत्ता में तो कोई है ही नहीं, फलाना जगह तो है ही नहीं। वो कहते ऐसी बातें करने वाले कभी पार पाने वाले नहीं है। यहां सर्व निमित्त आन मिले हैं, कैसे जाना कि वो पंडित जी कह रहे कि वो सामने वाला समझा रहा ना कि आत्मा क्या है, तब तो ऐसा विकल्प आया है ना, अब क्या बाकी रह गया, बस आगे नहीं, क्या करें क्या करें क्या करें, नहीं क्या नहीं करें, ये बात है, क्या नहीं कर सकते हैं। पंडित टोडरमल जी भी आप जैसे ही ग्रस्त थे, वे भी आप जैसे ही बाल बच्चे वाले थे, वे भी अपनी आजीविका के लिए उन्हें काम करना पड़ता था, और उसमें से उन्होंने ये काम किया कि नहीं, और वे भी आपके खंडेल बाल थे क्यों बोलो आप क्यों नहीं कर सकते, हमें क्या कमी है, समझे ना, बुद्धि की भी हमें कमी नहीं है, 100-100 200-200 फोन नंबर याद है बराबर हमारे पास, 1000-1000 एड्रेस एक एमएसए के क्या करते हैं, बाद में सबके पास समाचार भेज देते हैं। नहीं मेरे कितनी बुद्धा कितनी प्रतिभा है आप लोगों में, हमें तो ये डर लगता है कि यदि आप इस अखाड़े में आ गए तो हमें आउट कर दोगे साल दो साल में, क्यों है? लेकिन बात ऐसी है कि आउट कर दो तो कोई नुकसान नहीं है, आपके गांगुली जैसे हम आउट हो जाएंगे तो आपसे शिकायत नहीं करेंगे कि हमें क्यों टीम में से निकाल दिया नए युवक लोग टीम में आ रहे हैं तो वो चलाएं इस टीम को, चलाना तो पड़ेगी नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, रिटायर तो होना ही है कि नहीं, तो क्या बात हुई, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में तन्मय हुआ, क्या है? इस पर्याय की स्थिति तो बहुत थोड़े काल की है, है? और मुझे यहां सर्व निमित्त आन मिले हैं, तो मुझे इस बात काल खास में ठीक करना चाहिए, ठीक माने निर्णय पक्का करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि मैं कौन हूं, कैसे मैं गुरु के निमित्त से शास्त्र के निमित्त से अब मुझे ये नक्की और पक्का करनी चाहिए कि मैं, अरे आप कल्पना तो करो आप कितने बढ़िया जमाने में पैदा हुए। मैं तो कहता हूं कभी कभी भगवान महावीर जब मौजूद थे ना यहां, उससे भी बढ़िया जमाना आज है, अध्यात्म की दृष्टि से बोल रहा हूं नैमिदेव जी, सिद्ध करूंगा घबराना नहीं। भगवान महावीर जब उपदेश देते थे समोषण में, उस वक्त ये थे, उनकी कोई एकाध फिल्म बनी है सुरक्षित, अरे वह होए तो लाओ सारे झगड़े खत्म हो जाएं, दिगंबर श्वेतांबर के तेरापंथी बीसपंथी के मुनिपंथी के मुक्षुओं के क्यों, भगवान की दिव्य ध्वनि सामने है सब सुन लो तो नक्के के लो, तो वो दिन ऐसे नहीं थे और आज ऐसे हैं, मैं बदल नहीं सकता हूं कि मैंने ऐसा नहीं कहा था, क्यों कैसेट बन रहे हैं टीवी बन रहे हैं समय पर कुछ नहीं, कोई राजे पास रास्ता नहीं है, और आप चाहो तो घर पर दिन में चलाओ, यहां बंसमोर करने की जरूरत ही नहीं है, आप 25 डबे बंसमोर करो ना, बोलो ऐसा जमाना आया जैसा उस वक्त था। गांधी स्वामी के 8,500 घंटे के कैसेट मौजूद है, महावीर का एक भी नहीं, क्यों महावीर का होता तो अपन लड़ते नहीं ना, नहीं नहीं लड़ा, लड़ते तो अपन तब भी, क्योंकि लड़ते उनकी वजह से नहीं लड़ते, हम अपनी कसाई की वजह से हैं। स्वामी जी के 8,500 घंटे के टेप हैं और फिर भी हम लड़ते हैं ना, फिर भी लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं, यदि ऐसा निबटता होता तो निबट जाता ना, क्योंकि लड़ते तो हम कसाय से हैं, ख्याल में है ना, वो कसाय खत्म हो तो लड़ाई खत्म हो। तो ये क्या कह रहा हूं मैं, सम्मा दर्शन की प्राप्त करने की विधि बता रहा हूं आपको, फिर निकालो भी हमारी पुरानी जगह। हाँ क्या चल रही, कि वो कहते हैं कि एक पहले गुरु के मुख से और शास्त्र के मुख से बिल्कुल सही तत्व ज्ञान करे, वो पहले हो जाएगा। ऐसा नहीं, देखो ये बहुत कहते हैं वो तो अनुभव होगा तभी सही होगा, तभी सही होगा, नहीं नहीं सही, तब तो सम्यक होगा, तब तो सील लगेगा, राष्ट्रपति साइन करेगा, तब तो वो कानून बनेगा। लेकिन बिल तो पास हो ही गया है लोकसभा में और राज्यसभा में, क्यों तो राष्ट्रपति काय पे साइन करेगा, उसी पे ना जो लोकसभा में और राज्यसभा में पास होके गया है, तो वो सच्चा है कि नहीं, वो सच्चा है। लेकिन वो सर्टिफाइड होगा राष्ट्रपति के साइन से, अनुभव से तो ये सर्टिफाइड होना बाकी है, इसमें रंज मात्र भी गलती नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक बात और मैं कहता हूं कि कितना एक्यूरेट ज्ञान होना चाहिए शास्त्र के गुरु के माध्यम से, तब सम्यक दर्शन होगा। एक गैंग्रेन नाम की बीमारी होती है ना, तो कहते जहां उंगली वगैरह में होती है तो जल्दी बहुत तेजी से फैलती है, जल्दी से जल्दी काट दो उसे तो वो आगे ना फैल पाए तो बच जाए, और नहीं सारे शरीर में फैल जाए तो आदमी मर जाएगा, फिर कोई इलाज नहीं। एक आदमी को गैंग्रेन नाम की बीमारी हुई, वो गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा भाई देखो इतना है, ये उंगली पूरी काटनी पड़ेगी। कभी घर वालों से पूछता हूं, पत्नी से बात करता हूं कि नहीं ये तुमने क्रेम लगाया तो हाथ काटना पड़ सकता है, अभी डिसीजन करोगे, ऐसा कैसे कर लूंगा। इस पत्नी ने मेरे गले में बरमाला डाली थी तो पांच उंगलियों वाले के गले में डाली थी। अब मैं कैसे कह सकता हूं, कैसा कि नहीं कह सकता है तो बेटा तुझको ही जाना पड़ेगा। अगर उसने बड़ी मुश्किल से हाँ करी कि साहब काट दो, तो डॉक्टर ने यहां से हाथ काट दिया। क्यों, कि अभी तो यहीं तक थी बीमारी तो, लेकिन मैं जोखिम नहीं ले सकता, क्योंकि कदाचित एक अंश भी यहां फैल गया हो तो सारे शरीर में फैल जाएगा, मर जाएगा। तो यहां बीमारी है और यहां से काटने का अधिकार डॉक्टर को है, और डॉक्टर कर लेता है, समझ गए ना। अब मैं क्या कहना चाहता हूं कि हमारा काम कितना कठिन है इस अध्यात्म के डॉक्टर का, तो एक जब वो क्या करते हैं उस डॉक्टर से कहें, एक खून का अंश जो शरीर में शुद्ध है, जहां बीमारी नहीं है, गैंग्रेन नहीं है, वो कटना नहीं चाहिए, और एक अंश रहना नहीं चाहिए। बोलो ऐसा ऑपरेशन कर सकता है कोई डॉक्टर, यहां डॉक्टर बैठा हो तो हाथ उठा के बताए, नहीं ऐसा नहीं, इतनी बारीकी हमारे पास नहीं है। क्या हम तो इतना होगा तो यहां से काट देंगे, समझे, हम और कुछ नहीं। धर्म में कहते ये नहीं चलेगा, एक अंश पर का अपने में नहीं मिलाना और एक अंश अपना पर में नहीं मिलाना, ये शब्द मुख्यमंत्र कह सकते हैं, एक अंश भी पर का अपने में नहीं मिलाना और एक अंश अपना पर में नहीं मिलाना, ऐसा एक्यूरेट ज्ञान गुरु के मुख से और शास्त्र पढ़ के होना चाहिए, तब सम्मा दर्शन की क्लास में बैठ सकोगे, तब तुम प्रायोग लब्धि में प्रवेश करोगे, कारण लब्धि में नहीं, वो तो बहुत दूर है अभी दिल्ली। केवली भगवान जैसा निर्णय यहां हो जाता है देश में लब्धि में, प्रत्यक्ष परोक्ष का अंतर रहता है, सिर्फ इतना ही फर्क है कि उनने खुद देखा है और हमें देखने वाले ने बताया है, हम उसे सुन के जान रहे हैं, जान तो दोनों ही दे, नहीं जानने की बात तो है नहीं। क्यों, अभी आप कंप्यूटर पे देख के आए कोई चीज तो आपको मालूम है भाई क्रिकेट मैच में इतना इतने विकेट हो गए, इतने गिर गए, और आपने हमें यहां बता दी, क्या फर्क है, ज्ञान तो दोनों का सत्य ही है कि नहीं है, तुमने देखा है और हमें तुमने बताया है, तो भगवान ने साथ साथ देखा है और उनने हमें बताया है, तो हमारा ज्ञान भी ज्ञान है और उनका ज्ञान भी ज्ञान है। तो ये आपको परोक्ष माने दूसरों से सुनकर और दूसरों अपने शास्त्रों में से पढ़कर ये निर्णय करना पड़ेगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, आगे बढ़ूं के पीछे, थोड़े पीछे चलते हैं, आगे तो अपन कई दफे बढ़े हैं, पीछे चलते हैं। कैसे? कि जब शास्त्र में पढ़कर हमें ये निर्णय करना है और गुरु के मुख से सुनकर ये निर्णय करना है, तो पहले गुरु और शास्त्र को भी समझना पड़ेगा कि नहीं, कि चार जगह के कि वो भी इसका विशेषज्ञ है कि नहीं, उसके उस शास्त्र में भी ये बात लिखी है कि नहीं। हमारा ये दुर्भाग्य है कि हमारे ये शास्त्र है ना, इस शास्त्र में भट्टारक युग में बहुत सी कहानियां लिखी गई और उनकी एक ही स्टाइल है, हजारों कहानियां हैं। आप कहो तो वे सारी कहानियां मैं आपको दो मिनट में सुना सकता हूं। सुना दो, हर कहानी यहां से शुरू होगी। जम्बू दीप दीपन में सार और भरत क्षेत्रता में सुखकार, एक समय विपुला चल तीर और समूह शरण आयो महावीर। और फिर राजा सैन्य का उनके यहां ने पूछा कि महाराज आज तुम्हें धन कुमार जी की कहानी सुनूंगा। तो महाराज ने धन कुमार जी की कहानी सुना दी। दूसरे ने कहा मैं सुदर्शन जी की कहानी सुनूंगा, तो वो सुना दी। तीसरे ने कहा मैं महेंद्र की कहानी सुनूंगा, तो उन्होंने वो सुना दी। वो जो भी प्रथमान योग की गप्पे उन्होंने लिखी है, प्रथमान योग गप्पे नहीं है, लेकिन वो तो ऐसी ऐसी है, मैं अभी आपको बताऊंगा तो आपके पैरों में जमीन बदल जाएगी। अब आप पूजन का अर्थ करो, मैं महानियों का अर्थ करो, क्या करूं? द्वारा बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे ठिकाने नहीं है ना। तो उसमें उनको तो वे शास्त्र हो गए हमारे, क्योंकि सब लिखा है। भगवान महावीर ने सैनिक को पूछने पे ही बताया था, उस लेखक ने ऐसा लिख दिया तो हमारे लिए वे तो शास्त्र हो गए। लेकिन तत्वाशुद वाले ने नहीं लिखा, समय सार वाले ने नहीं लिखा कि भगवान महावीर के पास उन्होंने गौतम स्वामी ने पूछा था, उन्होंने ये जवाब दिया था। उन्होंने अपनी सीढ़ी लिख दी, बंदे तू सब सिद्ध है, अरे समय है ये, सो समय है पर समय है ये, समझ प्राणी मोक्ष मार्ग, तो हमारे लिए वह किताब हो गई। और किताब भी हमने फिर इतनी छोटे से आकार में छपा ली तो वो गुटका हो गया, और गुटका को जेब में रख ली, तो हमारे लिए कोई मतलब नहीं। और वे शास्त्र जो जिनमें वे कहानियां लिखी हैं, तो बिना जिल्द के बंधे ऐसे बांधे, ऐसे खोल खोल के शास्त्राकार, उसका नाम ही क्या रखा। और हमारे लिए जो असली किताबें हैं, तत्वा सूत्र है, समय सार है, वे तो किताबें होके रह गई। और वो जिनमें कुछ दम नहीं है, एक अक्षर सत्य नहीं है, घबराना नहीं, बहुत सोच समझ के कह रहा हूं, फिर मैं भी जानता हूं कैसे बन रहा। वो भगवान के शास्त्र हो गए। मैं नमूना बताऊं, मैं रिसर्च कर रहा था पंडित टोडरमल जी का, तो उदयपुर के शास्त्र भंडार में मुझे एक छोटी सी किताब मिली, बहुत बिल्कुल सड़ी गली थी और 125 वर्ष पहले छपी थी वो, और थी 250 वर्ष पुरानी, 125 वर्ष पहले छपी थी और वो सड़ गई थी बिल्कुल। तो उसमें उस किताब का नाम था मिथ्यात्व खंडन, किताब का नाम था मिथ्यात्व खंडन। अब मैंने उसे पढ़ी तो उसमें क्या लिखा, वही एक जम्मू दीप दीपन सिंह साहब जो मैंने बताया ना उसी स्टाइल में, तो राजा सैनिक ने भगवान महावीर से गौतम स्वामी से पूछा क्या कि पंचम काल में धर्म को भ्रष्ट कौन करेगा, तो उन्होंने कहा कि जयपुर में एक टोडरमल होगा और वो इसे भ्रष्ट करेगा, ऐसा उस किताब में भगवान महावीर ने सैनिक से कहीं बोला। असमें ऐसी एक दो नहीं, ये माताओं बहनों को काबू में रखने के लिए हजारों कहानियां ऐसी हैं। कैसी? कि एक लड़की थी तो वो एक मुनि महाराज बैठे थे, अथवा वो दर्पण वर्पण से बालमाल उछ रही थी, महाराज आ गए तो उसने बड़े मुंह टेढ़ा करके जरा उपेक्षा कर दी, तो उसके फल में नरक गई। फिर एक दुर्गंधा औरत हुई, फिर नरक गई। फिर एक बहुत बदसूरत गरीब के घर में हुई, फिर 5-6 दफे वो नरक और 5-6 दफे में दुर्गंधा लड़की। बिल्कुल एक स्टाइल में सैकड़ों कहानियां ना मिले तो मेरा नाम नहीं। फिर किसी मुनिराज के पास गई तो उनने बताया कि तूने मुनियों की निंदा की थी, उपेक्षा की थी, इसलिए तेरी ये दुर्दशा हुई। अब तू ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर, विधि बता दी और उसने मुनि महाराज की भक्ति करी और वो किए से फटाफट स्वर्ग, फिर मनुष्य, फिर स्वर्ग, पांच छह डुबकी स्वर्ग मनुष्य की लगाई और फिर वो मोक्ष चली। हर कहानी इस स्टाइल पे लिखी है, हजारों कहानी है, पढ़ी है मैंने गहराई से, जब कह रहा हूं मैं अब वे हो गए शास्त्र हैं और वे हो गए गुरु। तो ये डिसीजन करना पड़ेगा कि गुरु कौन और शास्त्र कौन है। सब हम कैसे निर्णय कर सकते हैं, हम तो साधारण गृहस्थ हैं, ये तो महाराज का हम निर्णय क्या करेंगे, ये सारे देश में चलता है। तो वही तरकीब यहां भी लिखी है, वही पेज फिर निकालो, इसमें लिखी है जांच करने की तरकीब, इसमें कोर्स लिखा है कि आत्मा के अनुभव करने के पहले क्या क्या चीजें समझना चाहिए। तो कोर्स आप पढ़ लो और वो जो समझा है वो गुरु, और वो ना समझा गया हुआ कि गप्पे मारे वो गुरु नहीं, बस खत्म। देखो कोर्स बताऊं कहां मिल गया, देखो लंबा था कितना चौड़ा था, समझो तो बहुत बढ़िया, नहीं समझो तो चलेगा। आदिनाथ के बाप का नाम क्या था याद हो तो बहुत बढ़िया, और नहीं हो तो चलेगा, समझे ना भी। लेकिन कौन कौन सी चीजें, एक तो मोक्ष मार्ग रत्नत्रय, फिर देव सात जीवादिक तत्व, देवशास गुरु, और निज पर का विवेक, मैं कौन हूं और पर क्या है, और मेरे लिए हितकारी भाव माने संबंध निद्रा मोक्ष, अहितकारी भाव माने आश्रय बंध पुण्य पाप, ये समझ है, इतना समझ है बस, तो देखना लगनी हो जाएगी। अब ये समझा है वो गुरु, अब इनकी बात ही नहीं करे, इनका नाम लेते ही बिच गए, आत्मा का नाम लेते ही एक करंट लग गया हो। मैं सच्ची घटना बताता हूं, मुंबई में मेरे लड़के रहते हैं, तो वो है ना कौन सा वो तीन मूर्ति, वहां कोई महाराज आए थे तो वहां वो लोग भी गए, तो वहां बैठ गए, तो उनसे बातचीत पूछी गई, तो पूछने तो बीच में मुझसे आत्मा शब्द निकल गया, है तुम कौन हो, तुम कौन, तुम समझिया कौन हो, क्या है तुम, तो कहा हम तो जयपुर के, समझ जयपुर के हो, क्या तुम्हारे पिता का नाम, डॉक्टर हम क्या, अरे करंट लग गया, सच बोलता हूं करंट लग गया, नहीं नहीं बस आत्मा शब्द मुंह से निकले और तुम्हारा अपना ट्रेडमार्क आत्मा हो गया। मैंने आत्मा शब्द से इतना एकदम एलर्जी, तो इसलिए कहते देव गुरु के बारे में, शास्त्र के बारे में निर्णय करना पड़ेगा, क्योंकि वो ही तो समझाएगा ना सम्मत आसन का विषय क्या है। जो सम्मत आसन का विषय बताए वो गुरु, और जिस शास्त्र में सम्मत आसन की विषय भूत वस्तु लिखी हो वो शास्त्र, वो सदगुरु और सत्सद। मैंने उसमें दिए परिभाषा निमित्त उपादान नामक किताब में, मैंने ये किताब लिखी है निमित्त उपादान पर, उसमें सदगुरु कौन है, सत्शास्त्र कौन है ना, नहीं साहब तो पिछली कमंडल वाले गुरु है और वे गुरु है। अरे भाई हमें तो देवशास वाले गुरु की बात नहीं है, अब हमें तो ये आत्मा समझना है, तो उसके लिए पंडित हुकुमचंद वाले गुरु की बात है। तो महाराज आएंगे तुम्हारे घर पे पढ़ाने, तुम कहोगे फटाफट तो प्लेन में बैठ के आ जाएंगे, ये तो हमें तब तो जब ही तक मिलते जब तो हम महाराज नहीं बने। क्यों मतलब आपको पढ़ाएगा कौन, चौबीस घंटा बारह महीना शास्त्र सभा कौन चलाएगा, बारह महीना पाठशाला कौन चलाएगा, ये शास्त्र कौन छपाएगा, ये शास्त्र कौन लिखेगा। तुझे मालूम तू था क्या, नहीं था, जतीश भाई थे वहां पर, वो कौन सा केसरी, केसरी में पंच कल्याणक था, अब हम एक महाराज साहब मिल गए और हमने थे तो रोजीना धुनाई, और रोजीना धुनाई पंडितों की, पंडित ऐसे पंडित ऐसे पंडितों की बहुत धुनाई हुई पंडितों की। तो मैंने एक दिन प्रचंड में कहा भैया एक कैसेट बना लो और मेरी ये कैसेट महाराज जी को जाके दे देना, और फिर महाराज जी कहेंगे जैसा मैं करूंगा। मैंने उस दिन उसमें यही कहा कि भाई आप पंडितों के प्रति इतनी उपेक्षा भाव बताते हैं, तो इस सारे देश में दैनिक पाठशालाएं चलेंगी भी आप चलाएंगे, हैं? ये जो सात सभाएं चलेंगी गांव गांव में भी आप चलाओगे, ये शास्त्र छपेंगे तो प्रेस में छपाने के लिए आप जाओगे, कौन जाएगा, ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा कौन आप कराओगे, ये स्वाहा स्वाहा आप कराओगे, ये जुलूस आप निकलवाओगे, क्या करोगे आप मुझे बताओ, यदि पंडित इतने बुरे हैं तो आप क्या करोगे? अरे भाई, तुम्हारा आपका काम आपका है, पंडितों का काम पंडितों का है, इसे कहां आपस में बैर विरोध है? कंपटीशन ही नहीं है। कंपटीशन हो तो पंडित की पंडित से होगी और महाराज की महाराज से होगी, हमारी तुम्हारी कहा की कंपटीशन? ऐसा बोला मैंने उसमें, इसे महाराज से जाकर दे देना मेरा कैसे, ऐसा भी बोला क्या? और महाराज फिर कल कहें कि हमें नहीं, तुम भाग जाओ तो हम कल चले जाएंगे। दूसरे दिन महाराज ने हमें बोला, मैं कहा महाराज कैसे सुन ली? नहीं नहीं, हमने तो पहले ही स्पीकर यही लगवा रखा था, हम तो डायरेक्ट सुन लिया था। फिर तो हमारा बहुत प्रेम हो गया, दो तीन दिन बहुत आराम से कटे। ज्यादा लंबी कहानी में आपसे नहीं सुनाना चाहता हूं। अरे क्या, कोई किसी की प्रद्वंदता है ही नहीं। हम जो काम कर रहे हैं वो आप नहीं कर सकते, जो आप कर रहे हो हम नहीं कर सकते। यदि प्रद्वंदता हो तो दो पंडितों में आपस में होगी, दो सेठों में आपस में होगी, दो मुनिराजों में आपस में होगी। सेठ की और पंडित की काय की प्रद्वंदता? सेठ की और मुनिराज की काय की प्रद्वंदता? सेठ की मुनिराज की और पंडित की काय की प्रतियोगिता? ये तो बिल्कुल अलग अलग क्षेत्र में, हम तो किसी के प्रतिद्वंदी है ही नहीं। ख्याल में आए ना? इसलिए कहते हैं देव सास गुरु के माध्यम से कि ये जो तत्व मैंने कोर्स बताया ना, इसका नाम ये चीज समझे जिसमें अपना आत्मा मुख है, वो देशना लब्धि। और इतना पक्का निर्णय हो जाए, उस डॉक्टर को ये सुविधा है कि यहां बीमारी हो तो यहां से हाथ काट दे, इस डॉक्टर को ये सुविधा नहीं है, एक भी रंज मात पर पदार्थ आत्मा न समझ लिया जाए और आत्मा का एक अंश पर में शामिल नहीं कर लिया जाए, अब वो कैसे? एक सेकंड में अब बात खत्म करता हूं। मैं उपदेश देता हूं कि मैं गोरा भूरा हूं, तो शरीर है गोरा भूरा और मैंने बोला तो ये मैंने शरीर को आत्मा समझा, ये नहीं चलेगा। वाणी निकली भाषा वगैरह से और मैंने बोला तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने उस वाणी का कर्ता मैं बन गया, वो है जड़ और मैं हूं चेतन। अब उल्टा लगाओ कि जो काम था जड़ का और मैंने का मैंने किया, इसे मैंने वाणी मैं बोला, जड़ का काम था और मैंने किया। अब उल्टा, काम था मेरा और किया जड़ ने, क्या काम था मेरा? जानना देखना मेरा काम है, समझे ना? और हम कहते हैं आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं। अरे आंखें देखती है कि आंख के माध्यम से आप देखते हो? देखने वाला पीछे अलग बैठा है, आंख तो चश्मा है। तो ये मिलावट हो गई, ये नहीं चलेगी। आत्मा ज्ञानादि गुणों का पिंड है और शरीर आदि रूपादिक रस शरीर के हैं, भाषा शरीर की है, पुद्गल की है, ये मैं नहीं हूं, ऐसा पक्का सच्चा निर्णय देशना लब्धि में हो। और फिर वो जो भगवान आत्मा ज्ञान में आया, जिसमें विकल्प में आ गया अपनापन, अब बोलते हैं विकल्प से निर्विकल्प कैसे होगा, ये प्रश्न है इसमें। किन्ने जो मुल्तान वालों ने पूछा, क्या है विकल्प से निर्विकल्प कैसे होता है, ये जो प्रश्न इसमें आया इसकी इतनी पूर्व भूमिका है, तब बात आगे चलेगी।